अमर वाणी का पेज नंबर 205 है, 205 सब मिलकर इसकी वाणी का उच्चारण करेंगे, फिर इस पर विचार करेंगे।
करम फल इच्छा में जीव भरमाई, करम फल इच्छा में जीव भरमाई,
करम फल इच्छा में जीव भरमाई, करम फल इच्छा में जीव भरमाई।
धार मनोरथ आवे की धारा, मानुष देही मुकत की धारा,
मानुष देही मुकत की धारा, मानुष देही मुकत की धारा,
जो चित आवे ज्ञान विचारा, जो चित आवे तत् ज्ञान विचारा,
जो चित आवे तत् ज्ञान विचारा, जो चित आवे तत् ज्ञान विचारा।
सत विचार जब हृदय पाई, सत विचार जब हृदय पाई,
सत विचार जब हृदय पाई, सत विचार जब हृदय पाई,
करनी शोध मन आन समाई, करनी शोध मन आन समाई, निर्मल करनी जब नित उठ कीनी, निर्मल करनी जब नित उठ कीनी,
निर्मल करनी जब नित उठ कीनी, निर्मल करनी जब नित उठ
भक्ति प्रेम तब अंतर चीनी, भक्ति प्रेम तब अंतर चीनी,
भक्ति प्रेम तब अंतर चीनी, भक्ति प्रेम तब अंतर
विनाश आत्म सतभासी, देह विनाश आत्म सतभासी,
देह विनाश आत्म सतभासी, देह विनाश आत्म
आत्म सदभासी उपजे बिरह परम सुख राशी उपजे बिरह परम सुख राशी
परम फल इच्छा में जीव भरमाई भार मनोरथ आवे जाए। हमारा जो दैनिक जीवन है या सांसारिक जीवन है उसके बारे में ये वाणी कह रही है कि हम सुबह से लेकर रात्रि तक जो भी जीवन व्यतीत करते हैं कोई ना कोई सांसारिक कर्म करने की सोचते हैं और उसमें सफलता की सोचते हैं, क्योंकि विफलता कोई नहीं चाहता, सब फल जो है सफलता के रूप में चाहते हैं। लेकिन वाणी कह रही है कि कर्म फल इच्छा में जीव भरमाई, वो कहते हैं कि इच्छा करके कर्म करना इच्छा पूर्ति के लिए, फिर उसके फल की प्रतीक्षा करना और उसके फल में सुखी और दुखी होना, ये जीव का भ्रम है। भ्रम क्यों है? क्योंकि पूरा जीवन हमारा व्यतीत हो जाता है, हमको पता है कर्म भी ठीक प्रकार से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसमें भी संशय है। उसका फल भी मन के अनुकूल मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, इसमें भी संशय है। इसीलिए कर्म की प्लानिंग करते वक्त भी, कर्म करते वक्त भी, और कर्म का जब अंत होता है तब फल की प्रतीक्षा होती है, फल की प्राप्ति होती है, कि इन तीनों में ही संशय बना रहता है। इसमें निश्चित कुछ भी नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसलिए कह रहे हैं जीव भरमाई, तो जीव के अंदर बेचैनी बनी रहती है इन तीनों अवस्थाओं में। और कहते हैं धार मनोरथ आवे जाए, और इसी प्रकार पूरा का पूरा जन्म या पूरा का पूरा जीवन हमारा समाप्त हो जाता है और मन में जो संस्कार इकट्ठे हुए संसार के वो बेचैनी वाले ही इकट्ठे हुए, क्योंकि संसार में निश्चित कुछ भी नहीं है, कुछ भी कभी भी हो सकता है। इतनी बड़ी प्रकृति है, इसके अंदर ऐसी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिसका कर्ता मैं हूं नहीं, और ऐसी ऐसी परेशानी में पड़ जाता हूं कि सारी जिंदगी मेरी खत्म हो जाती है। तो प्राकृतिक आपदाएं जो है वही ऐसी ऐसी मेरे जीवन में आती हैं, लोगों के जीवन में आती हैं कि जिंदगी की खत्म हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। एक तूफान आ जाए, ओले पड़ जाए, बेचारा किसान कितने प्रेम से कितने पुरुषार्थ से फसल उगाता है और ओले पड़े सारी फसल उसकी चौपट हो गई। अब बताइए, मैं यदि सर्विस करता हूँ फिर भी मुझको पता है कि महीने में तनख्वाह मेरी आ जाएगी निश्चित रूप में, उसमें गुजारा कर लूंगा, लेकिन वो किसान बेचारा क्या करेगा? इसका पूरा साल जो है वो उस फसल पर निर्भर करता है। तो कहने का मतलब ये है कि संसार में आप कुछ भी क्यों ना कर लीजिए, लेकिन इच्छा करके जो कर्म है और इच्छा करके जो जीवन है ये जीव के लिए भ्रम है। भ्रम क्यों है? क्योंकि जीव इसमें संतुष्ट होना चाहता है, संतुष्ट वो हो ही नहीं सकता, इसलिए भ्रम। और इन्हीं संस्कारों को लेकर, इसी स्वभाव को लेकर उसके देह का अंत आ जाता है। तो कहते हैं कि धार मनोरथ आवे जाए, तो वही इच्छाएं लेकर वही संस्कार लेकर ये देह त्याग देता है, फिर इसको तुरंत ही विज्ञान के अनुसार नई देह मिल जाती है। सब कुछ कहते हैं बीच में टाइम गैप है, इस देह का अंत हुआ
क्योंकि जीव स्वयं देह कभी था ही नहीं, जीव और जीव के साथ उसके संस्कार जिसको हम मन कह देते हैं, उसके सारे संस्कार, सारे उसके कर्मफल, सारा उसका स्वभाव, सब कुछ सुरक्षित बच गया, मन बुद्धि भी सुरक्षित बच गई। अब बताइए, नया शरीर खड़ा हो गया, वही इंद्रियां, वही मन, वही बुद्धि उसमें कार्यरत, और जिस स्वभाव को लेकर उसने देह का त्याग किया था बचपन से ही, वो उसको वो स्वभाव सुरक्षित मिल जाए, संस्कार भी सुरक्षित मिल जाते हैं, और कर्मफल इसको हम प्रारब्ध कह देते हैं, जो जो भोगना है जन्म में अगले जन्म में वो भी नहीं आपको सुरक्षित मिल जाता। तो आपका पूरा जन्म तो फिक्स है, संसारी जीवन जो है आपका, बाहर से तो वो जीवन फिक्स है, लेकिन मेरे पास जो सामर्थ्य थी वो ये थी कि मैं अपने मन की शुद्धि कर सकता था, बुद्धि की शुद्धि कर सकता था, और मन बुद्धि को मैं ईश्वर में लगा सकता था संसार छोड़कर, या यूं कहें कि सतपुरुष के मार्गदर्शन के अनुसार अपने जीवन की सोच, अपने जीवन का निर्णय मैं बदल सकता था यदि मुझको किसी गुरु पर विश्वास है। तो ये बात में तभी आती है क्योंकि किसी सतपुरुष को देखकर ही, या उस पर जब व्यक्ति का विश्वास आ जाता है उसके पश्चात ही उसके ज्ञान पर उसका विश्वास आता है, यदि ज्ञान पर विश्वास नहीं आया तो फिर सारी सोच आपकी निरर्थक है, फिर आप संसारी ही। तो कहते हैं कि धार मनोरथ आवे जाए, इस प्रकार से इसका आना जाना, जन्म लेना मरना, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। हम समझते हैं शायद हमारा ये अलबेला जीवन है, अलबेला जीवन नहीं है, पता नहीं तेरे कितने जन्म हो गए और कितने और हो जाएंगे, और हर जन्म इसी प्रकार का होगा। इसीलिए वर्तमान जन्म तुमने जो बचपन से लेकर आज तक व्यतीत किया है, इसके अनुभव से ही तुझको सीखना पड़ेगा, ये वाणी कह क्या रही है, सब कुछ कह क्या रही है। तो आगे कहते हैं, मानुष देही मुकत की धारा, जो चित आवे तत् ज्ञान विचार। अरे मनुष्य देह किस लिए मिली थी, ये मुक्ति की धारा है, अर्थात फिर मुझको अगला शरीर ना मिले इसके लिए तूने इस जन्म में तैयारी कर ली थी, क्योंकि शरीर का क्या करेगा तू। मनुष्य कहते हैं जैसे बार बार सुनते हैं, पांच विकार होते हैं प्राकृतिक रूप से, चाहे पशु है, चाहे पक्षी है, चाहे मनुष्य। मनुष्य के पास बुद्धि भी है, चाहे तो इन विकारों से वो मुक्त हो सकता है मानव जन्म, इसलिए वो कह रहे हैं कि मानुष देही मुक्त की धारा, ये मुक्ति की धारा है, अर्थात मुक्ति का वक्त है, मुक्ति का समय मिला है तुझको मानव जन्म के रूप में, तू अर्थात हर बंधन से मुक्त हो सकता है, जो चित आवे तत्व ज्ञान विचार। लेकिन कंडीशन है, यदि तेरी बुद्धि में वो तत्व ज्ञान समझ में आ जाए और उसकी एक्सेप्टेंस बुद्धि, अर्थात बुद्धि उसको स्वीकार कर ले, तभी तो उसको क्रिया में लाएगी। तो मनुष्य जन्म मिला था इस इच्छा रूपी रोग से मुक्ति पाने के लिए, और जब तक आपका मन है, मन के संस्कार हैं, भोग के संस्कार हैं, वासना है, तब तक मुक्ति तो दूर की चीज, तुम्हें सुखी होना है, दुखी होना है, अर्थात सुख दुख का मतलब होता है बेचैन है। तो मनुष्य जन्म इस बेचैनी से मुक्ति के लिए मिला था, और मैं इसी बेचैनी के बीच द्वारा बो रहा हूं उसकी फसल काटने के लिए। तो संसारियों की निकल करके मनुष्य का जो जीवन व्यतीत हो रहा है, ये पूरी तरह से इसको शास्त्र पशु जीवन कहते हैं, क्योंकि इसमें ज्ञान की कोई जरूरत ही नहीं हो रही। तो तत्व ज्ञान क्या है, तत्व कहते हैं ईश्वर या ब्रह्म। अब वो ब्रह्म सत्ता इस देह के अंदर मौजूद है, क्योंकि मेरी देह जो जीवित है वो उस सत्ता के कारण जीवित, नहीं तो ये तो मट्टी है, जैसे संसार का पदार्थ है ऐसे शरीर भी है। तो मैं हूं जीव, जीव का मतलब है जिसके अंदर चेतना है और जो जानता है, इसी को बुद्धि भी कहते हैं। तो तत्व ज्ञान क्या है, इस देह के अंदर मेरा मन भी मौजूद है, इसके बारे में मुझे कोई डाउट नहीं, मन में इच्छाएं उठ रही हैं, विभिन्न प्रकार की कामनाएं उठ रही हैं, विभिन्न प्रकार के सुख के दुख के जो संस्कार बने हैं उसके अनुसार संकल्प उठ रहे हैं वो मन है। तो बुद्धि बेचैन किस कारण से है? मन के कारण बेचैन। और फिर रास्ता क्या है? रास्ता भी आपने संसार में ही ढूंढ लिया बेचैनी से मुक्त होने का। तो संसार में तो पहले भी कभी चैन नहीं था, आज कहां से चैन मिल जाएगा तुझे? तो संसार में तो सुख है और दुख है, बनना है बिगड़ना है, अच्छा है और बुरा है। संसार की हर चीज द्वंद रूप है, दिन के साथ रात मिला हुआ, अच्छाई के साथ बुराई मिली हुई है, बनने के साथ बिगड़ना मिला हुआ है। तो ये द्वंद रूप में जगत है, इसलिए अकेला कभी आपको मिल ही नहीं सकता। चाहे आप संसार में कुछ भी क्यों ना कर लीजिए, आपका जीवन विफल होना ही है। आपकी बेचैनी का संसार में कोई इलाज दूर दूर तक नहीं। सत्पुरुष बन गए फिर तत्व ज्ञान क्या हुआ? तो संसारिक ज्ञान है। तत्व ज्ञान क्या है? तत्व कहते हैं ईश्वर। इस देह के अंदर जिस प्रकार से मेरा मन मौजूद है, उसी प्रकार से वो ईश्वर सत्ता भी तो इस देह में मौजूद है। और वो सत्ता कहते हैं आनंद रूप है, शांति रूप है, मोक्ष रूप है, उसके बारे में ये कहा जाता है। तो जो शांति रूप है, आनंद रूप है, जीवन रूप है, मैं उसका संग करूं या मन रूपी मुसीबत का संग करूं? मैं करता यही हूं नकल करके कि मन रूपी मुसीबत का संग करता हूं, उसमें जीवन की सफलता ढूंढता हूं, ईश्वर को मैं भूला रहता हूं। हमने कितने सत्संग सुने होंगे, लेकिन शायद हमें से आधे लोग ऐसे निकलेंगे जो ईश्वर का स्मरण करने की जरूरत ही नहीं समझते। जागने से लेके सोने तक संसार का ही स्मरण करते रहते हैं, और रात में भी चैन नहीं पड़ता है तो सपने देखते रहते हैं। इतना सत्संग सुनने के बाद यदि बुद्धि का इतना निर्णय भी नहीं पहुंचा कि मनुष्य उसी का स्मरण करता है, असार उसी की याद करता है जिसमें उसको अपने जीवन की शांति नजर आती है, इसको हम सुख कह देते हैं। सुखी होने के लिए मैं याद करता हूं। तो तत्व ज्ञान तो ये कह रहा है, सत्पुरुष का ज्ञान तो ये कह रहा है, जितना तू संसार को याद करेगा उतना ही तू मानसिक रूप से बेचैनी इकट्ठी कर लेगा, वो संस्कार बनेगा। तो जब संसारी संसार को याद कर करके मैंने बेचैनी इकट्ठी करनी है, उसके संस्कार बनाने हैं, तो मनुष्य जीवन तो विफल हो गया मेरा। तो मैंने बुद्धि से सीखा ही कहा, तब तो ध्यान को तो मैंने सीखा ही नहीं। जब इस देह के अंदर ना बुद्धि दिखाई पड़ती है, ना मन दिखाई पड़ता है, ना ईश्वर दिखाई पड़ता है, दिखाई तो तीनों में से कोई भी नहीं पड़ता। जो दिखाई नहीं पड़ता वही परेशान हो रहा है। मैं कहता हूं मैं परेशान हो रहा हूं, मैं तो दिखाई नहीं पड़ता, मेरा शरीर दिखाई पड़ता जो कि एक इक्विपमेंट की तरह से है, एक यंत्र की तरह से। क्योंकि मन में जब इच्छा उठती है तो क्या करते हो आप? इस शरीर रूपी इक्विपमेंट का ही तो इस्तेमाल करते हो, इसके द्वारा ही तो वो इच्छा पूरी करते हो। लेकिन सोचते कभी नहीं जी तो मैं इच्छा के लिए रहा हूं, और उस इच्छा की पूर्ति शरीर के द्वारा कर रहा हूं, लेकिन शरीर मेरे हाथ में नहीं, कभी भी रोगी हो जाता है, कभी भी मर जाता है। तो अपने बारे में मेरी कभी भी एक सिस्टमेटिक थिंकिंग होती ही नहीं। उल जलूल जैसे संसारी लोग सोचते हैं, जैसे पशु पक्षी सोचते हैं, ऐसे मैं भी सोचता रहता। तो सत्पुरुष कहते हैं जब तक तू सोचेगा नहीं और सत्पुरुषों के ज्ञान के अनुसार अपनी बुद्धि के निर्णय को बदलेगा नहीं, तब तक तू संसार ही याद करता रहेगा, ईश्वर को क्यों याद करने लगा जिसमें तुझको जीवन की सफलता कोई नजर ही नहीं आ रही। संसार में यदि 50,000 का 1,00,000 का नुकसान हो जाए तो कई दिन मैं सोचता रहूंगा, विचार करता रहूंगा, और पूरा साल मेरा बर्बाद हो गया, ईश्वर के मार्ग में मैं चला ही नहीं, कितना बार नुकसान कर लिया उसकी मुझे एक बार भी याद नहीं आ रही, तो कैसी मेरी है बुद्धि। इसीलिए जब तक मन में सत्य विचार नहीं आता, मन का मतलब यहां बुद्धि से, जब तक बुद्धि में सत्य विचार का निर्णय नहीं होता, उसकी एक्सेप्टेंस नहीं आती, तब तक आपका जन्म बर्बाद ही हो रहा है, बल्कि आप नीचे की तरफ जा रहे हो, रसातल की तरफ जा रहे हो। ये निर्णय आपकी बुद्धि का होना चाहिए। इसलिए आगे कह रहे हैं, सत विचार जब हृदय पाई करनी शुद्ध मन आन समय। सत विचार जब हृदय पाई, हृदय कहते हैं बुद्धि, बुद्धि के अंदर जब ये जो सत विचार जो शास्त्र और वाणी दे रहे हैं इसका निर्णय बुद्धि में हो जाता है। जब बुद्धि का निर्णय होता है तो उसको फिर करनी में बदलता ही है, ऐसा हो ही नहीं सकता मेरा दिन बिना सिमरन के चला जाए, ये हो ही नहीं सकता। और मैं 10-10 साल सत्संग सुनते हुए हो गए, मेरा सिमरन का प्रोग्राम ही कोई नहीं बना सकता, तो मेरे जीवन की गति कहां ले जा रही है मुझे। मैं भले ही सत्संगी हूं, याद रखिए तब भी आपका पतन ही हो रहा है और वो निरंतर हो रहा है, क्योंकि आप मन के संकल्प को ही याद कर रहे हो, उसी के वशीभूत होकर ही संसारिक जीवन व्यतीत कर रहे हो, इसके ऊपर आपकी वो सोच है ही नहीं। इस कीमती देह को ईश्वर चला रहा है, आप एक श्वास भी क्या ले सकते हो एक्स्ट्रा, मौत का वक्त आ जाकर एक श्वास के लिए भी आप मजबूर हो जाओ, वो श्वास का जीवन ईश्वर के अधीन है, इसीलिए उस ईश्वर को प्राणनाथ कहा जाता है, वो प्राणों का मालिक है मेरे, जो मेरे प्राणों का मालिक है उसकी मुझे याद ही नहीं आती, तो मेरी बुद्धि कहां खड़ी हुई। इसलिए कह रहे हैं कि सत विचार जब हृदय पाई करनी शुद्ध मन आन समय, तब इस मन के अंदर उस करने का संकल्प उठता है जिसको सत करने कहते हैं, जो करनी इस जीव को ईश्वर से अर्थात अंतर्यामी ईश्वर से अंदर मिलाती, बुद्धि का निर्णय बदलता है, फिर मैं शुद्ध करने पर आ जाता हूं, संसार में केवल काम चलाता, संसार में मैं केवल काम चलाता कि शरीर को जिंदा रखने के लिए, काम करने के लिए, परिवार पालन के लिए जितनी मिनिमम नीड है उसके लिए मैं सोचता हूं, बाकी प्रभु के अधीन छोड़ लेता हूं, क्योंकि प्रारब्ध उसके हाथ में, तो मैं उसके लिए चिंतित नहीं होता, मैं जो कुछ भी प्रभु देता है उसको भोगने के लिए तैयार रहता है, अर्थात ईश्वर हुक्म में मैं जीने की अपनी आदत बनाता हूं। तो ऐसी बुद्धि जब आपकी होती है तब क्या होता है कि निर्मल करनी जब नित उठ कीनी भक्ति प्रेम तब अंतर चीनी। इस प्रकार जब निर्मल करनी तेरी निरंतर होती है, अर्थात तेरा दिनचर्या का जो प्रोग्राम है उसके अनुसार तो ईश्वर भक्ति भी करता है, स्वाध्याय भी करता है, सत्संग श्रवण भी करता है, संसार के काम भी करता है, तो कहते हैं भक्ति प्रेम तब अंतर चीनी, तब इस देह के अंदर वास्तविक भक्ति तेरी हो पाती। वो कहां होती है, वो मन में ही होती है, क्योंकि मन में जैसे आपके संस्कार इकट्ठे हैं वैसे ही उसके अंदर से संकल्प उठ रहे हैं इच्छाओं के रूप, जिसके आधार पर तेरी करनी हो रही है, तो मन में जो है वो तेरे संस्कार बन जाते हैं अध्यात्म के, ईश्वर के, प्रभु के। तो कहते हैं कि भक्ति प्रेम तब अंतर चीनी, चीनी का मतलब होता है देखना, तो भक्ति प्रेम तुझको अंदर अनुभव होता है, तो सिमरन तेरा अनुभव में बदल जाता है, कि जिस प्रभु के बारे में हम पढ़ते थे वो तो है, वो तो मेरे अनुभव में है, तब उसके अंदर लगन तेरी बनती है जिसको प्रेम कहते हैं। अर्थात प्रेम से जैसे मैं संसार में लगा रहता हूं, परिवार में लगा रहता हूं, उसी प्रकार से प्रेम से मैं करतार में, ईश्वर में लगा रहता हूं, और वो प्रेम मेरा अनुभवी है, हवाई प्रेम नहीं है। तो पहले जो मैंने अभ्यास किया था वो अभ्यास फिर मेरा अनुभव में बदल जाता है, वो प्रेम में बदल जाता है। उसके बाद क्या होता है, कहते हैं कि देह विनाश आत्म सत भासी उपजे मिरह परम सुख राशि। ये क्या होता है, मुझको ये देह नाशवान नजर आने लगता है और आत्म सत भासी, आत्मा सत्य नजर आने लगती है, कि आत्मा परमानेंट है, देह नाशवान है, अभी यह अभी खत्म हो जाएगा, अभी नया पैदा हो जाएगा। जब बुद्धि की यह स्थिति हो जाती है कि आत्मा के लिए बुद्धि जीती है, देह को तो केवल आत्मदर्शन का साधन समझती है, इसके अलावा उसका देह का उपयोग वो जानती कुछ नहीं, वासना उसके अंदर खत्म हो चुकी होती है या उसका निशा छोड़ चुकी होती है। तो कहते हैं कि उपजे विरह परम सुख राशि, तो वो स्थिति आती है कि वो परम सुख है। परम सुख क्यों कहते हैं? पूरे संसार में उसके समान दूसरा कोई सुख है ही नहीं। वो अलबेला सुख, अलबेला आनंद है, अलबेली शांति है। वो शांति पूरे देह में विराजमान है, हर वक्त विराजमान है। उस अंतर्यामी प्रभु के आनंद को जो मौत के साथ भी खत्म नहीं होता। इसलिए अर्जुन जो पूछता है कृष्ण से कि मैं मेहनत भी करूं इस जन्म में, बीच में मृत्यु आ जाए तो सारी मेहनत में कहीं बेकार तो नहीं चली जाए। तो कृष्ण उसको भरोसा दिलाते हैं, नहीं बेकार नहीं जाएगी। जो कुछ भी तुमने कमाई कर ली उसको मैं सुरक्षित रखूंगा और नए जन्म में एज इट इज प्रदान कर दूंगा, और जो कमी रह गई इस जन्म में उसके लिए मैं साधन प्रदान करूंगा कि अगले जन्म में तू उस कमी को पूरी करके मोक्ष को प्राप्त करेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। तो अब बताइए कि लिखित गारंटी गीता में भगवान कृष्ण दे रहे हैं अर्जुन, और मैं प्यासा का प्यासा संसारी की नकल करके मैं जिए जा रहा हूं, जिए जा रहा हूं, बड़े बड़े लक्ष्य आगे को बढ़ाते चले जा रहा हूं। ईश्वर मैंने छोड़ दिया, संसार के इतने काम बढ़ा दिए, सबके लिए टाइम आ गया मेरे पास, प्रभु के लिए टाइम ही नहीं था। इसलिए बहाना ही सारे सारा जन्म बहाना ही बात रहा, क्या करूं, बड़ा बिजी इंसान हूं, कहां फुर्सत है मुझे ईश्वर को याद करते, क्यों याद करेगा? ईश्वर ने तेरे तुझको जीवन की सफलता नजर ही नहीं आई, बुद्ध ने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया कि ईश्वर में भी जीवन की कोई सफलता हो। इसलिए जब तक मैं अपने विज्ञान को, ईश्वर के विज्ञान को इन शास्त्रों के आधार पर समझने की कोशिश नहीं करता और समझने के साथ साथ उस पर गहरा मनन नहीं करता, जैसे कि मैं भी सर्विस करता हूं, मैं भी बिजनेस करता हूं, तो रात दिन इस पर मनन चलता रहता है। केवल जो मैंने सौदा खरीद के दुकान में रख लिया उसको बेचने तक मेरी सोच सीमित नहीं रहती, आगे कैसे इसका विकास होगा, कैसे मैं धन को मल्टीप्लाई करूं, कैसे मैं साधन मल्टीप्लाई करूं, रात दिन आपका मनन चलता रहता है बिजनेस की उन्नति के लिए, और ईश्वर मार्ग की उन्नति के लिए कोई मनन उसकी मनन की तो मैं जरूरत ही नहीं समझता, क्योंकि मेरा वो लक्ष्य नहीं बना, बुद्धि की बात समझ में नहीं है। ऊपर ऊपर से मैं कहता रहा कि मैं सत्संगी हूं, मैं बेईमानी नहीं करता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता, इससे क्या हुआ? एक कबूतर क्या कोई झूठ बोलता है, क्या कोई बेईमानी करता है? लेकिन कबूतर का कबूतर ही तो ईमानदार भी 100% ईमानदार इंसान भी है, झूठ भी नहीं बोलता है, कभी है तो पशु, क्योंकि मनुष्य जन्म जिस कार्य के लिए तुझको दिया गया वो तो तुम्हें करा ही नहीं, उसकी तो जरूरत नहीं समझती, समझी तुमने, तेरी बुद्धि का निर्णय ही नहीं बदला, तू घोर संसारी का संसारी का। तो हम चाहे तो कितने भी एडजेक्टिव अपने ऊपर लगा सकते हैं, अपने लिए लगा सकते हैं, लेकिन शास्त्र बताएगा कि तेरे सारे एडजेक्टिव लगाए गए अपने साथ गलत है, ये तू अपने बारे में ठीक नहीं सोच रहा। इसीलिए कहते हैं कि ये तत्व ज्ञान हमको सीखना ही पड़ता है, और इस तत्व ज्ञान के सीखने के अनुसार, इस विज्ञान को सीखने के अनुसार जब मेरी बुद्धि निर्णय बदलती है, फिर अपना ईश्वर मार्ग का जो प्रोग्राम है उसको बनाती है, फिर उसमें समझौते नहीं करते। जिस प्रकार संसार के काम मैं नियमित रूप से करता हूँ, उसी प्रकार प्रभु का प्रोग्राम भी मैं नियमित रूप से अपने जीवन में अपनाता हूँ, तब जाकर मानव जीवन मेरा सफल होता है और बेचैनी से मैं मुक्त होता हूँ। ओम जय सुंदर।